तीनों इंद्रियों की अनुभूति तो हमें नहीं होती है, हम तो परंतु हनुमान के आराध करने और प्राणी करके हमारे स्वरूप को प्रकट करते हैं और उसी से हम बंसी राज्य में प्रवेश करते हैं। जितना जितना हमारा समर्पण होता है उतना ही हमें भक्ति प्राप्त होती है। तदात्म प्रतिभा को मारो उस समय जड़ भाव दूर होता है और जड़ता दूर हो जाती है चिन्मय भाव को प्राप्त हो जाता है और जितना ही चिन्मय भाव प्राप्त होता है तदात्म प्रतिभक्त मारो अमृत को प्राप्त होता है। उस समय शुद्ध स्वर्ग की स्थिति आती है शुद्ध स्वर्ग के भाव भी प्रकाश होने लगता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा या छोटी सी लड़की वो कुछ भी नहीं जानता है यह जानती है कि युवा काल आने पर संसार में कैसे प्रवेश होता है और क्या होते हैं। तो धीरे धीरे जब बड़ा होता है उम्र बढ़ता है उसके दिमाग पर उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी तरह से आत्मा ये अतिगतित स्थिति में है जब गुरु के चरण में आश्रय लेकर भजन साधन करने लगता है तो धीरे धीरे उसका विकास होता है और विकसित होते होते उसके अंदर में रसभावना की स्थिति आती है। जब रसभावना की स्थिति आती है उसी भावना से जब होकर भजन साधन करते हैं तो राम मुदस्तम प्रतिपात मानो मया को भ्रियाय जगत को दे रही उस समय मैंने उसको एक्सेप्ट करता और बहुत निर्माता है और उस समय उसको मैं अपने पास बुला लेता हूँ जो कि हमारे पास में आकर हमारे परिकर बन करके हमारी सेवा करता है। इसी तरह से पहले गुरु के चरणों में समर्पित होना है। भगवान भी देखते हैं कोई व्यक्ति आश्रय नहीं अब मैंने सारे कृष्ण नहीं करते आज सब बड़े अकाल श्रीमद भागवत में भी वर्णन हुआ है कि नारद ने भी कहा है मुक्ति दराजे कभी भी स्मरण भक्ति योग कोई भी व्यक्ति भगवान का भजन करता है क्या कहिए हम जो भोग कोई ना ले क्या कोई बोले कि हमें मुक्ति चाहिए मुक्ति देकर भी उसको छुट्टी कराते हैं क्योंकि देखते हैं कि गुरु का आश्रय नहीं है कैसे भी उनको छोड़ो हटाओ और जो कोई व्यक्ति गुरु का आश्रय लेकर के बड़ा चतुर है आश्रय लेकर के भजन करता है तो भगवान की सेवा को ही जाता है तब भगवान उनके रथ में आते हैं अंदर था नहीं जाते। इसलिए छात्रों ने स्वर्ण से गुरु की महिमा दिखाई है कि पहले गुरु के चरणों में आश्रय और गुरु के चरणों में समर्पित होना है। भक्ति राज्य में जैसे प्रवेश करने के लिए मानदंड होता है एक नापतल होता है कि कितना भक्ति में प्रवेश हो रहा है या नहीं। भागवत के प्रारंभ में ही दिखा दिया कि हरि कथा में जैसे रुचि हो तब भजन में कुछ प्रवेश हो रहा है भजन साधन कर रहा है नहीं तो नहीं कर रहा है। कि पहले किसको भजन करता है तो उसका प्रमाण क्या है क्या वो भजन कर रहा है। हरी कथा में जब होती है सर्वधर्म से शुरू हुए पाले लेके जान हरी कथा होती नहीं है वापस नहीं हरी कथा में प्रवेश नहीं उसमें देव है तब समझा जाएगा कि भजन में प्रवेश कर रहा है ये मानदंड होता है। इसी तरह से भजन राज्य में जब आगे जाते हैं निष्ठा होती है निश्चय उसका मानदंड होता है उसके बाद में रुचि। इसी तरह से एक एक करके दिखाया तो आगे प्रवेश करने के लिए क्या क्या लक्षण होता है किस तरह किसी के भाव स्थिति होती है तो भाव कुछ प्राप्त होता है भाव का भी लक्षण शांति का बैठक सार्वतम ग्रंथ मान सुंदरता ये लक्षण जब आएगा क्षमा हो विनती संध्यान से अनाशक्ति हो मान सुंदरता ये सब लक्षण आने पर भक्ति में प्रवेश होता है तभी समझा जाएगा। इसी तरह से कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता है पहले उसका देखा जाता है कि गुरु का आश्रय है नहीं तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करो। दूसरी बात है कि हमारे वैदिक काल से पौराणिक काल से श्रवण समाज वर्गीय काल से और वर्तमान हमारे गोस्वामी और गुरु वर्ग के आचरण में इन कालों में हमेशा हम लोग देखते हैं गुरु के चरणों में आश्रय लेना और गुरु के चरणों में आश्रय लेने से क्या होता है कि गुरु की कृपा से ही सब पुण्य प्राप्त होता है। वैसे काल में जैसे आरोही उद्धावक उपमन्यु आदि का देखा जाता है उन लोगों ने गुरु की सेवा की है गुरु के चरणों में अपने हृदय को समर्पित किया है। जावाला उपमन्यु का जावाला सत्यकाम का भी देखा जाता है जबकि सत्यकाम कौन क्या है ऋषि गौतम जी के बाद में गौतम जी ने उनसे पूछा कि सत्यकाम बेटा तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है तुम्हारे गोत्र क्या है ये बताओ। उनसे तो अपना नाम बताया सत्यकाम बोले कि क्या तुम माता जी से जाकर के पूछ लो पिताजी कौन है और तुम्हारे गोत्र क्या है ये जान करके सब आओ। जबकि माता जी से पूछा माता जी ने भी सच बात की क्यों आप ले रहा हूँ तुम उनको अपनी सेवा करते हुए तुम्हें मैंने प्राप्त किया परंतु मैं जानता नहीं जानते नहीं हूँ तुम्हारे पिता कौन है अब मुझे गोत्र का पता नहीं है केवल माता ज्यादा ना उन प्रसंग का इतना बदला और जबकि गुरु के पास में गए और उस समय जाकर के जैसे ही बता दिया उस समय में गुरु जी ने उसको फिर सब बता दिया बल्कि मेरा तुम जमा को ब्राह्मण क्यों समाज के लोग तो कहेंगे कि ये दूसरी बात है क्योंकि उसने मत कहा है गुरु के चरणों में जो समर्पित होता है संत बात को वो लोग बोल सकता है वो जमा के बोल सकता है
प्रेम वल्लभ
बोलना होता है कभी किमारा नहीं कल नहीं गुरु के चरणों में समर्पित होकर के जीवन में जो पालन तो इससे क्या है उस समय शादी का लोग जो है संस्कार ब्राह्मण संस्कार दे करके इसी तरह से उपमान हूँ जबकि गुरु जी ने कहा मेरा तो मोटा खुला हो रहा है क्या खाता है क्या पीता है क्या करता है उस समय बचने जो रूप में रहते हैं उनके मोड़ में क्या लगा रहता है दूसरा है वो सब खा जाते उसी से आप बचते हैं जब गुरु जी ने पूछा कि आप क्या करते हो बोले कि बचने का वो जो मुंह में खेल लगा रहता है दूसरा है वो सब उसके बाद में जब उसको भूल कर जाए तो वो समझा नहीं भगवान का दूध उसको भी दिया जैसे दिया तो उससे पता नहीं चला कि उसमें क्या होता है आंखें अभी हो गई उन्होंने जाकर के गिर पड़ा गुरु भी आए थोड़ा और कहा कि तुम्हारी कैसे दशा कैसे बनी बोले कि मुझे भूल कर रहा था आपने दूध पीने को मना कर दिया मैंने भगवान का दूध पी लिया तो सोचा कि सफेद दूध है उसको दिया अच्छा तुम्हारी ऐसी स्थिति हो गई जैसे ही आशीर्वाद दिया माथे पर हाथ रख दिया साथ ही साथ नहीं आके आ गए जैसे खुले तो हुआ था कि रावण के लिए जिन्होंने अपना जीवन दान दिया बलिदान दिया और राजा ने उनकी आंखें उठा ली और जब के ढूंढते ढूंढते चले बहुत दिन हो गया कि गुरु जी का अपने दर्शन करना और लड़कियां पकड़ करके चलते चलते गए जिन्होंने गुरु की सेवा के लिए अपना जीवन दान दिया गुरु की सेवा हमें करनी है हम जब पहले आए थे प्रेमानंद गुरु के साथ में तो हम दोनों ने यह विचार किया था भाई हम लोग तो बोलते हैं हम तो भैया करना तो जानते हैं सब खिलाफ का यही काम है हमारा तो ये प्रेमानंद गुरु यही सिखाए दूसरी बात है कि गुरु की सेवा खाली गुरु वैष्णवों की सेवा करते हुए हम लोगों ने देखा जब हम मठ में आए छोड़े थे उस समय हमने खुद भी आना नहीं था ये लोग भी हमें याद नहीं होता था हरे तरह कहूंगा गगनंद तो बहुत सारी बातें क्या बोल रहे हैं जिस समय मंदिर में आया उस समय महाराज गुरु जी का ऐसे आशीर्वाद दे दिया कि इसी तरह से समझते हैं कि गुरु की सेवा से सब कुछ पुण्य प्राप्त होता है गुरु की सेवा ही महान है जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं और सारी विद्याओं पर सब कुछ उनके हृदय में प्रकाश करा देते हैं इसलिए निष्पक्ष रूप से जो कोई गुरु के चरणों में आश्रय लेता है और उनकी सेवा में समर्पित होता है उनको भगवान ही अपना लेते हैं उनको सब कुछ अपने हृदय में प्रकाश करा देते हैं
बताया गया है बदलाने की चेष्टा किया
क्योंकि देशभक्त इतना बड़ा महान है, लाखों जन्मों में भी देश से मन ना को बतला करके भी अंतिम चीज नहीं कर रहा है। मान लिया एक गुरु है किंतु अभी शिक्षित नहीं, अनंत भी दुख है, तत्व ज्ञान भी पूर्ण नहीं हुआ, किंतु सरल और निष्कपट है, किंतु अभी पूरी तरह से तत्वज्ञ या भगवान के चरणों में प्रेम कभी यदि ऐसे पुरुष की हम सेवा करेंगे तो क्या होगा, होगा क्या? इस चीज को समझने के लिए ये समझिए कि कृष्ण हम ही भोक्ता
अहम सर्वजोगा भोक्ता सर्वदेव च,
कृष्ण ही सब यज्ञों के सब चीज के भोक्ता है। हम जो देवताओं की उपासना करते हैं, हम जो कुछ करते हैं, यहाँ तक कि देवताओं की भी जो उपासना करते हैं, इसका फल देवता लोग नहीं देते, इस चीज को समझो। कौन देता है?
भगवान से।
भगवान ही देते, क्योंकि ये देवता लोग भी भगवान से पृथक नहीं है किंतु भगवान नहीं है, इस चीज को भी समझो। इसलिए यदि देवताओं से पूजा से भगवान उसके फल को देते हैं तो जो गुरु जी की पूजा करता है तो इसका फल कौन देगा?
भगवान।
कोई भगवान ही देते हैं, इसे भले ही मध्यमाधिकारी हो कोई बात नहीं, किंतु गुरु के प्रति समर्पित हो, भगवान के प्रति समर्पित हो, निष्कपट हो, अंतर और बाहर एक हो, तो ऐसे गुरु की पूजा करने से भी भगवान प्रसन्न होकर के मेरी ही पूजा कर रहा है, उसके फल को वो देंगे। क्या है फल? फल को क्या देंगे? वो फल क्या है? सत्संग प्रदान करेंगे। हमारे जीवन में सबसे बड़ा फल हुआ है कि साधुओं का संग मिल जाए तो हमारे जीवन को ऐसा बनाएंगे, भगवान के साथ में चला देंगे, हम जीवन भर के लिए अन्य खुशी हो सकते हैं और भगवान का प्रेम मिल सकता है। सत्संग नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। महत सत्संग का ये महान फल है। क्या फल है? गुरु जी का दिया जाइए वो करेगा कौन? भगवान को अपनी लज्जा बचानी है ना, किंतु यदि गुरु निष्कपट नहीं है तो कुछ गड़बड़ी होगी, किंतु गुरु न करने पर भी निष्कपट और उनका तो मध्यम अधिकारी में है और ऐसे गुरु की भी कारण नहीं है तो कुछ नहीं देखिए गुरु उसको अग्रसर। और यदि गुरु औषुम आत्मा हो, नारदी कहता या सुखदेव को स्वामी का प्यार और जैसे रूप सनातन इत्यादि के जैसे बीरत भगवता को उसने भी लाया है तो क्या करेंगे? ऐसा कह दिया जाओ सर्वास्थी भगवान उसको पूर्ण करते हैं, भगवान ही पूर्ण करने वाले थे वो और आदि चाहती है। इसे गुरु तत्व में विश्वास रखो। यदि कोई निष्कपट रूप से गुरु की सेवा करता है, उनके आदेशों को पालन करके भजन करता है तो थोड़े देर में ही उसको संसार से बाजार जो रोग आए कोई से रोक नहीं सकता, वो सब बाधा विघ्न को पार करके आगे बढ़ते हैं। भगवान उसको ये सारी व्यवस्था वो करते हैं, इसलिए करते हैं। इसलिए गुरु तत्व में विश्वास रखो। पहले बदला है गुरु तो भगवान से नहीं है, किंतु होने पर भी ये गुरु परंपरा निभाया किसी एक नहीं, कोई भी गुरु हो जो अभी प्रकट हो, प्रकट गुरु होना चाहिए। वैसे तो कृष्ण है गुरु है, महाप्रभु जी गुरु है, नित्यानंद गुरु, बलदेव प्रभु जी गुरु है, लक्ष्मण जी गुरु है, ये बात तो ठीक है। कभी प्रकट काल में हम एक गुरु की का आश्रय लेता ही क्यों देते हैं? वो तो बात करेंगे नहीं, इसलिए जगत में कोई प्रकट रहने पर एक ऐसे गुरु का आश्रय दिया जाए जो भगवान की तरफ में बढ़ा बढ़ा सकें और जन्म जन्मों का दुख दूर करके भगवान की तरफ उनके पिता काम कर देता है। अब हमारे भक्ति में डालकर श्रीमान माधव महाराज जी को अपना वक्तव्य रखिए।
गुरु तो
ये कृष्ण सेवा की बातियां आ गई तो अपनी चालाकी चतुराई को छोड़ करके गुरु के समीप अपने हृदय को छोड़ करके निकला जिम्मेदार क्या ये चुरा करके गुरु से स्पर्श कर सकते मैं अच्छा हूँ ये नहीं दिख रहा है हम जैसा है कभी उसने कोई बुरी भावना आई गुरु से कर दिया गुरु की हमारे हृदय में ऐसी भावना है ये निष्पक्ष कृष्ण भक्ति करते समय कुछ भी जगत में नहीं जाता ये निष्पक्ष भक्ति के द्वारा अपना संसार सुधार करना चाहता हूँ संसार में संसारिक रूप में सुखी रहना चाहता हूँ ये भगवान है ये नहीं
Thank you.
अपने जान के हाथों में लेकर के ये मुहूर्त की बात आप लोगों ने सुना, ऐसे करके अपने खुदी की सलाह दी, महापुरुष ने कैसे जगह को बहार किया, अच्छा अपने गुरु से आके वहां पर समस्त जगह पर सुखित हो रहे हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जो कोई परम के नाम नहीं जानते हो या परम नाम की नहीं हो रहे हो। क्यों? गुरु के छह कारण ऐसे हैं जो उनको बड़ा कर रहे हैं जगत में। वो क्या है? वो अपने गुरु सेवा के कारण जो भी अपने पद की सेवा करेंगे क्या होगा? वो भी ऐसे जगत मरण ना होंगे, प्रकट मरण ना होंगे और वो जगत को प्रदान करेंगे। मेरे लिए समय पंक्चर करिए, मेरे समय जारी हो रहा है। मैं जिस चीज को मैं सफल करना चाह रहा था ये समय पंक्चर के कारण मैं पूरा नहीं कर सका। चाहेंगे कि मैं एक बिजनेस वहां करना चाहता हूँ। देवस्था उन्होंने बताया कि गुरु विष्णु कैसे पालन करते हैं। गुरु जी जैसे बताया महापुरुष जी से सर्वोत्ती प्रिया सर्वोत्ती अर्थात कृष्ण के स्वाम है, श्रीमद रामचंद्र कृष्ण के स्वाम है, अपना है, उनके लिए भक्ति के लिए सौंदर्य है, उनको महापुरुष देने के लिए आए थे। ये क्या है? भगवान प्रति यात्रा पर भरोसा किया भक्ति कहा गया है। वर्तमान के सदगुरु हैं वो क्या करते हैं? उसी भाव को अगर जिनको प्रदान करते हैं। इसलिए सदगुरु चरण पर तात्पर्य क्या है? हम ये मधु चरण करेंगे तो उनके लिए प्रदान करेंगे। इस भाव के द्वारा सदगुरु की सदा प्रतिपालन करते हैं। यही कहा करके मैं बात को समाप्त कर रहा हूँ। कुछ त्रुटियां हो अगर क्षमा करेंगे और इसके लिए अच्छा हो आशीर्वाद करेंगे कि दिल की सेवा कर सकूँ। ये समस्त हमने गुरुवार में सुना प्रदान करने की कोशिश किया बोलने के लिए। ये जिस दिन से ट्रेनिंग है जब गुरुपाल और उन्होंने पहुंचे
Thank you.
हृदय की जरूर किताब हो। आप उसका नाम
यहाँ भगवान श्री कृष्ण गुरु के रूप से संबंधित ग्रहण वेदना दर्शन सबसे इस सबका शब्द का तात्पर्य समझ करके ब्रह्मा दर्शन कर बहुत उन्नत अधिकारी होने के बाद भगवान ने उनको बहुत प्रदान किया जिसको हम लोग कहते हैं दीक्षा। भगवान ने उन्हें शिष्य मंत्र प्रदान किया, उनके साधन के फल से वे और उन्नत हुए, तब जाकर उनको कामदायित्री प्रदान किया। उसके प्रभाव से कामदायित्री का साधन करते करते उनको सत्य की अनुभूति हुई, इसका की वर्णन तो साधारण रूप से मैं समझता हूँ गुरु और शिष्य इसकी जो प्रक्रिया कहाँ से आरम्भ होती है और कहाँ तक पहुँचती है प्रक्रिया, मैं ब्रह्मा जी की प्रेरित से भगवान ने उनके लिए गुरु का कार्य किया। बाद में तो ब्रह्मा जी जो के हो गए उन्होंने गुरु का कार्य किया। सृष्टि करने के बाद इन जीवों को मैं कौन हूँ या जगत क्या है इन तत्वों को जानने का विचार का भी वे भी ब्रह्मा जी को उनसे समझ करके उनके समीप जाकर कुछ निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने जिन जीवों की उपलब्धि की थी इसका उद्देश्य ब्रह्मा जी ने उनके यहाँ जो ब्रह्मा जी के साथ इस प्रकार गुरु शिष्य का संबंध भगवान का हुआ वर्तमान समय में इसका प्राय नहीं देखा, नहीं हो सकता कि ये बात नहीं। तो उस समय जो गुरु शिष्य का संबंध हुआ या दीक्षा की जो प्रणाली थी और वर्तमान प्रणाली थी उसको क्या करें, प्रभुपाद ने क्या इंगित किया है तीन प्रकार की दीक्षा वैदिक पौराणिक और सांख्यिक। वर्तमान में जो हमारी दीक्षा होती है इसको हमें सांख्यिक की दीक्षा करें। ब्रह्मा जी का कुछ अधिकार था, भगवान साक्षात रूप से प्रकट नहीं हुए, इंद्रायण प्रेरणा के ब्रह्मा जी उनका भी करने लगे जिसको हम सामान्य जीवों के साथ ऐसा नहीं देता। हम लोग बिल्कुल अनधिकारी थे, बिल्कुल अनधिकारी गुरु साक्षात रूप में आ करके जो उनकी पसंद के उठाते हैं बार बार सिखाते हैं उनको फिर भी हम गिर जाते हैं, फिर जाते हैं उनको फिर भी हम गिर जाते हैं। हमारी हमारा ऐसा अधिकार किंतु जो भी भक्ति राशि एक ऐसा राशि है जहाँ की सबसे अधिक अनधिकारी का विस्तार प्रवेश हो सकता है। इस पद में जो दीक्षा दी जाती है उसको दान की इसमें हम गुरु से मंत्र ले रहे हैं एक ज्योति भी जाते हैं ये संबंध का स्थापन करके अपने को अनुशासित मान करके अनुशासन कभी होकर उसको करने की चेष्टा करते हैं तब हमारा जाकर और आगे जाकर कुछ अधिकार उन्नत हो जाए। यह जो प्राथमिक अवस्था है यहाँ की हमने लौकिक रूप से गुरु को स्वीकार किया, गुरु ने हमें स्वीकार किया, गुरु का स्वीकार करना लौकिक नहीं हो सकता है। तो भी सामान्य रूप से गुरु शिष्य का संबंध हुआ इसको हम लोग दिशा में जाते हैं ना इनको नहीं। वास्तव में हमारा संबंध अभी नहीं हुआ है जो हम अधिकारी नहीं हुए किंतु इस नियम के अधीन होकर भी ये हमारे गुरु हैं मैं इनका हम चेष्टा करते हैं कभी भी होते हैं तो जो गुरु हैं हमें उठाने के लिए तैयार रखते हैं। ऐसा करते 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 जब हमारे छुट्टी है तब वास्तव में जा करके संबंध ज्ञान होता है वह वास्तव में दीक्षा की शक्ति होता है। इसलिए जब दीक्षा शब्द की परिभाषा दी गई है उसमें दीक्षा वस्त्र क्रिया है इसमें से कि तांबे को सोना बना दिया जाता है, तांबे को सोना बना दे एक बार सोना बन जाने का उसके बाद तांबा नहीं बने। तो गोपाल लिखते हैं कि दीक्षा का मतलब किसी काम प्राप्त होना, जिसको एक बार किसी काम प्राप्त हो गया वह फिर अभिज्ञा के द्वारा दर्शन हो जाएगा संभव। वास्तव में ये जो दीक्षा है वह है अधिकार की आवश्यकता, वास्तव भजन वहां से शुरू होता है। इसलिए संबंध के नाम के बाद जिसने भजन शुरू किया उसको कहा गया यथार्थ साधन, जिसमें गुरु गोस्वामी ने गुरु मंगल का नाम दिया। किंतु हम लोग सामान्यतया अनुष्ठान की दीक्षा करते हैं, इससे भी उन्नत दीक्षा होती है उसको वैदिक की परंपरा के अंतर्गत किया जाता है। भगवान ने साक्षात ब्रह्मा जी के साथ ऐसा कर रहे हैं उस परंपरा को भगवत परंपरा। ये जो अनुष्ठान की परंपरा हुई जिसमें हमने मंत्र दिया और अनुशासन बद्ध होकर के हम कुछ कर रहे हैं यह है सांस्कृतिक परंपरा, इसको पंचांशी की परंपरा। उद्देश्य क्या है अनधिकार के बोलते हैं यदि इस चीज को करते 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 वो अधिकार को प्राप्त नहीं कर देंगे यहाँ की हमारा संबंधी नाम स्थापित हो जाएगा। किंतु जो वर्गी की दीक्षा है वह इससे बहुत ही सरल है। व्यक्ति अधिकारी जैसे ही संबंध गुरु स्थिति का मिलन हुआ सबका संबंध स्थापित हुआ भगवान के साथ संबंधी का पूरा दूरी होता है वह साक्षात होने में लग जाता वह है भागवत परंपरा वह है भागवत परंपरा। इसलिए भागवत परंपरा और भाषाति की परंपरा यह दो अलग अलग परंपरा नहीं महाप्रभु के मुख्य उदय में से एक उदेश आता है कि पांचरात और भागवत दो हम एक बहुत से लोग ऐसा करते हैं पंचायत की परंपरा अलग है भागवत की परंपरा अलग है पंचायत के कुछ लोग शास्त्र के अंतर्गत मानते भी नहीं किंतु हम लोगों के महाप्रभु नाम से बहुत करते हैं जमुना सबसे बेहतर पंचायत रथ का नाम लेकर उसमें उन्होंने प्रतिपादित किया है पांचात्री जो है वह शास्त्र शास्त्र के अंतर्गत है कलयुग में जो दीक्षा दी जाती है इसी के संप्रदाय में सामान्य रूप से वह पांचात्र के अंतर्गत है। ये जो हम लोग वित्त मंत्र प्राप्त करते हैं मंत्र का एक मंत्र है जो हम लोग ग्रहण करते हैं इसका भागवत आगे बढ़ती है किंतु भागवत परंपरा क्योंकि यह वैदिकी परंपरा के आधार पर है वैदिकी क्यों कहते हैं भागवत के लिए हम एक बात आती है भागवत विद्या ये विद्या क्या है। मैंने जहां तक इससे विचार किया है तो मैंने यह निष्कर्ष निकाला है किस धातु से बना है वेद और उसी से बना है वेदन तीन का एक ग्रंथ है वेदन वेदन मतलब मनुष्य भागवत को जो विद्या अवधि अर्थात विद्या की आखिरी सीमा बताया गया है क्यों क्यों रक्षात्मक विद्या के लिए सामान्य लोग चीज को ग्रहण कर लेते हैं रक्षात्मक विद्या के लिए वैदिकी परंपरा में वेदों में जो सर्वोच्च तत्व है वह छुपा हुआ है खूब छुपा हुआ है सामान्य लोग ग्रहण ही नहीं कर सकते ये सब आदमी ने खूब विचार करके उससे संतुष्ट की रचना की संतुष्ट नहीं हुए पुराणों की रचना की महाभारत की रचना की फिर भी संतुष्ट नहीं हुई नारद जी की बात देखी ऐसा देखा जाता है कि इसका अनुभव हुआ ये जो अनुभव है इसी का अनुभव हुआ क्या अनुभव हुआ जिस चीज को आगे वर्णन करना है उसे बिल्कुल जीवों के कल्याण के लिए उस चीज को उन्होंने नारद जी की बात साक्षात ये उनके अनुभव उस चीज का वर्णन उन्होंने किसने किया श्रीमद भागवत जी क्यों इसको कहा है विद्या की अंतिम अवधि विद्या मतलब वेद वेद को यहाँ से मानिए वेतन रूपी जो धर्म है अनुरूप रूपी जो धर्म है उसकी जो पराकाष्ठा है वही यहाँ है विद्या जिस चीज का वर्णन श्रीमद भागवत में हुआ है इसको भागवत का दर्शाई करते हैं भागवत का प्राण तो इसको निकाल दिया जाता है भागवत प्राण ही हो जाएगा ये है भागवत में विद्या की अंतिम अवधि इसलिए भागवत उठा गया विद्या हो गया था अनुभव की जो अंतिम पराकाष्ठा है वह है यहाँ भागवत में उसका वर्णन यह किसने प्राप्त हो जाता है भागवत परंपरा में यह भी बहुत सरल हो जाता है जैसे रूप गोस्वामी के पक्ष में हम देखते महाप्रभु के मिलन से पहले उनका वह हस्तकार छुपा हुआ था महाप्रभु के मिलन के बाद जैसे ही महाप्रभु ने शक्ति का संचार किया उन सारे शक्तियों के अनुभूतियों को अठप हो गई जो कुछ भी जीवन महाप्रभु के वर्णन है या जीवन के लिए वर्णनीय है उसकी अनुभूतियों को साक्षात हो गई उससे अधिक भी कुछ हो सकता है उसका वर्णन नहीं किया गया हो सकता है उसकी अनुभूति किंतु यह है भागवत परंपरा जहाँ वेदन रूपी धर्म सुलभ हो जाते हैं तो पंचात्र की परंपरा में हम उनको आगे दूसर करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं एक ही बड़ी स्थिति आई संबंधी काम कर देगा फिर हम साधन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे वस्तुता लक्ष्य की दृष्टि से भागवत और पंचात्र की परंपरा इसमें कोई खेल नहीं है किंतु वर्तमान समय में अधिकार की बात करते हैं अधिकांश लोग भागवत भागवत की दीक्षा का अधिकारी नहीं है उनके पंचरात्रि की दीक्षा का ठीक होकर के कार्य करते हैं इसी चीज को हम भागवत में गुरु के समझ में कई चीज है किंतु एक जगह एक गुरु का आपको नाम लेकर के वर्णन किया गया है प्रथम स्कंध में जो है यह काम भाव मध्यम विचार लेकर माथा स्मृति स्मृति विधि प्रकार करवाऊंगा संसारियां करुणियां पुराण जो है तम व्याप सूर्य रूपयाम वह साक्षात रूप से सूर्य को हम लोग मुनियों के गुरु के रूप में वंदना कर रहे हैं। उनके साक्षात यहाँ कई शब्द हैं कि अलग अलग व्याख्या करने से गुरु का कार्य क्या क्या होता है, उस कार्य में जो तारतम्य है इसका हम वर्णन है। यह स्वानुभावन यहाँ जो स्व अनुभव है स्व मतलब होता है आत्मा, आत्मस्वरूप परमात्मा, तो आत्मा और परमात्मा अर्थात भगवान इनका जो संबंध है, इस संबंध से जो अनुभव होता है स्वानुभावन, इसका जिन्होंने वर्णन किया या जीवन के उन्होंने वर्णन किया अखिला उसी कारण उसी के लिए सारी खुशियां सब लोग उसी को लेकर के अपने सिद्धांत करते हैं। किंतु उसी का जो सार है उसके लिए भागवत को कहा गया निगम कर दो प्रभु सविगम कर, जो रस है वही सार है। उसी चीज का जैसे वृक्ष हो रहा है उसका हम हल निकालते हैं, क्या है उसका रस है, किंतु वह वृक्ष का सार है जो कि औषधि के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं। श्रुतियों का जो रस है वही श्रुतियों का सार है, कौन है श्रीमद भागवत है। हम देखे दिनों के लिए सूर्य को सामने प्रकट किया अध्यात्म पुस्तकों का यह श्रीमद भागवत और जो लोग इस संसार से उत्तीर्ण होने की आकांक्षा रखते हैं उसके लिए भी श्रीमद भागवत का कार्य। जो लोग साधारण रूप से अपने तम अर्थात अध्यात्म से प्राप्त करने की इच्छा करते हैं उनके लिए एक श्लोक में कई बार अंतिम जो शब्द है अध्यात्म जीवन चिकित्सा जो संसार से पार होने की इच्छा रखते हैं अथवा जो तमोगुण के द्वारा अंधे हो चुके हैं उनके पक्ष में यह सामान्य कार्य सूर्य गुरु स्वामी का, किंतु जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है उनका जो जीवों से वास्तविक कल्याण के लिए उन्होंने प्रदर्शित किया वह क्या है, उन्होंने जो अनुभव किया अथवा जीव और भगवान का जो संबंध है इसके बाद आपका अवसर किया वह भगवान स्वामी का और स्थितियों का विचार है इसकी अंतिम श्रीमद श्रीमद भागवत में उसका उन्होंने वर्णन है। ये है संदेह के वर्णन। गुरु एक ही स्थान पर रहकर के दोनों कार्य कर सकते हैं, सामान्य लोग जो नवगत नहीं होना होना चाहते हैं फिर उसको ग्रहण कर लेंगे। इसलिए हम देखते हैं हम तो अपनी परंपरा में व्यास देव जी पिछले दो हमारे लोगों को बड़ी आश्चर्य की बात है शंकराचार्य की परंपरा है उसमें उन्होंने व्यासदेव जी को ग्रहण किया है और सुखदेव गोस्वामी को ग्रहण किया है। उसके बाद आते हैं उनके परम गुरु गौड़पाद तो उन लोगों ने व्यासदेव जी को उसी रूप में समझा, सुखदेव गोस्वामी को उसी रूप में समझा और उनके उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के उनके उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के उन्होंने अपने मायावाद को शुद्ध किया है। किंतु हम लोग जो शब्द कर रहे हैं या ये केवल भागवत को वेद व्यास जी का जीवों के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ रचना मान करके अपना सब भी श्रुतियों का जो अर्थ है या जो श्रुति का सार जश्मा उन्होंने हमें दिया है इसके द्वारा हम देखने की चिंता करें। इसलिए हमारा जो लक्ष्य होता है